आज है 15 अप्रैल दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। कुपवाड़ा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में एक युवा की मौत, तो राज्य सरकार ने कहा लड़की को सुरक्षा के लिए लिया गया हिरासत में।
तो हमारी कोशिश है पहले वहाँ हालात ठीक करें और साथ ही साथ जो लड़की का स्टेटमेंट है उसको प्रोटेक्शन भी दे और उस पर कार्रवाई भी होगी बाज़ाब्ता।
माओवाद प्रभावित बस्तर में सामाजिक एकता मंच को किया गया भंग और इकबाल बानो की 7वीं पुण्यतिथि पर याद करेंगे उन्हें विवेचना में।
मुझे याद है कि जब उन्होंने ये शुरू किया है तो हॉल में जिस किस्म का शोर पैदा हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने बत्तियां भी बंद कर दी हॉल की, थिंकिंग दैट पीपल विल स्टॉप एंड नोबडी स्टॉप, शी डिडंट स्टॉप, शी वेंट ऑन सिंगिंग।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारत प्रशासित कश्मीर में जिस लड़की से कथित छेड़छाड़ के आरोप के बाद तनाव शुरू हुआ था, उसके बयान का वीडियो लीक होने और उसकी पहचान जाहिर करने पर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कहा है कि वीडियो लीक होने के बाद उसकी जान को खतरा था, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया है। उसके बयान का वीडियो लीक हो गया था जिसमें उसने छेड़छाड़ का आरोप स्थानीय युवकों पर लगाया था। इस बीच में कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू अभी जारी है। राजधानी दिल्ली में आज से ऑड इवन योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया। इसके तहत विषम तारीख वाले दिन विषम नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही सड़क पर उतरेंगी और सम तारीख वाले दिन सम नंबर वाले वाहनों को ही चलाने की इजाजत होगी। ऑड इवन के तहत वाहनों पर यह पाबंदी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होती है। योजना 30 अप्रैल तक के लिए है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर महीने दिल्ली में इसे अब लागू किया जाएगा। उत्तरी सीरिया में जबरदस्त लड़ाई की खबरें हैं और अलप्पो शहर में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को मिल रही सफलता के कारण हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि करीब 30,000 लोग अलप्पो से विस्थापित हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के प्रवक्ता जेरी सिम्पसन ने कहा कि तुर्की में शरण मांगने गए कई लोगों को वहां से वापस भेज दिया गया है। उन्होंने प्रवासी मामले पर यूरोपीय संघ की आलोचना की।
It is an absolute travesty that the European Union has been doing everything it can to close off its borders to these desperate people.
ये बहुत दुखद है कि मदद के लिए तरस रहे सीरियाई लोगों को शरणार्थियों से के बोझ से दबे हुए तुर्की, जॉर्डन और लेबनान भेजने के लिए यूरोपीय संघ हर संभव कोशिश कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। ये थे जेरी सिम्पसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उद्योगपति विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है। ये फैसला प्रवर्तन निदेशालय की अनुशंसा के बाद लिया गया है। विजय माल्या 2 मार्च को ब्रिटेन चले गए थे। वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर डिप्लोमेटिक वीजा के साथ ब्रिटेन रवाना हुए थे। माल्या पर सरकारी बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाने का आरोप है। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कैद एसएफसी ने पड़ोसी देश लीबिया में किसी भी विदेशी सैनिक कार्रवाई न करने की चेतावनी दी है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी सैनिक हस्तक्षेप से लीबिया बिखर सकता है। लीबिया में गृह युद्ध में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को सफलता मिलने को लेकर पश्चिमी देशों में चिंता है। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार के कामकाज संभालने के बाद नेटो गठबंधन सेना से मदद मांगने की स्थिति में सेना भेजने पर विचार हो रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर के कुपवाड़ा में आज प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई ताज़ा झड़प में एक युवा की मौत हो गई है। ये लोग 12 अप्रैल को एक सैनिक द्वारा लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने इस लड़की को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि इस लड़की की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। इस लड़की के साथ उसकी मौसी और उसके पिता भी हैं। मैंने अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर फ़ोन कर रियाज मसरूर से इस बारे में पूरी जानकारी मांगी।
जी देखें, जाहिर है आज तो बंद का आह्वान भी किया गया था और प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू भी लगाया था, इंटरनेट पे भी पाबंदी है। लेकिन इस बीच कुपवाड़ा के ही नतनुसा गांव में जब प्रदर्शनकारी बाहर निकले तो आर्मी ने फायर किया उनको तदर करने के लिए, तो गोली लगने से कोई 7 युवक घायल हो गए जिसमें से एक आरिफ हुसैन की मौत वाकई हो गई। तो इसके बाद फिर से टेंशन स्पाइरल हो गए और उसके बाद अलगाववादियों ने कल के लिए भी बंद का आह्वान किया है।
जी, वहीं जिस लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ की खबर आ रही थी, उस लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस का कहना है कि उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है।
जी, उस लड़की की पुलिस हिरासत के मामले को लेकर भी काफी गुस्सा पाया जाता है। आज कुछ लॉयर्स ने भी उनको एक्सेस करने की कोशिश की, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी उनको एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने डिनाई किया। पुलिस ने कहा कि इजाजत नहीं है उनसे मिलने की, तो इसको लेकर काफी कंफ्यूजन और कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो गई है। पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने वो वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने वो बयान दिया था कि उनके साथ एक सिविलियन लड़के और एक वर्दी वाले ने जो है मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी, उस वीडियो बयान के बाद पुलिस का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और इसलिए उनको, उनके पिता और उनकी एक मौसी को पुलिस थाने में रखा गया है।
अभी जो ताजा हिंसा हुई है उसमें एक युवा की मौत हो गई है, उसके बाद क्या ताजा हालात है वहाँ पर?
जी देखिये, ताजा हिंसा के बाद अब कुपवाड़ा के बगैर दूसरे क्षेत्रों में भी प्रदर्शन होने लगे हैं, जैसे सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल जिले में भी प्रदर्शन की खबरें हैं और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ की खबरें हैं। इसी तरह से दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में भी युवाओं के एक जुलूस ने जो है सीआरपीएफ के बंकर की तरफ मार्च किया और उनको चेज करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े। तो इस तरह से जो कुपवाड़ा का ये मामला है अब ये दूसरे क्षेत्रों की तरफ फैलने लगा है। इसी फैलाव को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक तो कर्फ्यू को कंटिन्यू किया है और इंटरनेट पर बैन भी जारी है।
तो कुपवाड़ा में तनाव, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में एक युवा की मौत। ये थी श्रीनगर से रियाज मसरूर। मैंने राज्य में सत्ताधारी पार्टी पीडीपी के प्रवक्ता नईम अख्तर से पूछा कि कुपवाड़ा में तनाव की स्थिति है, वहीं पुलिस ये दावा कर रही है कि लड़की की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जा रहा है, तो इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
देखिए, ये सारे इंसिडेंट के बाद सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि इलाके में नॉर्मलसी हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। उसके बाद एक प्रोब ऑलरेडी ऑर्डर हुआ है आर्मी की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक प्रोब ऑर्डर किया है। तो हमारी कोशिश है पहले वहाँ हालात ठीक करें और साथ ही साथ जो लड़की का स्टेटमेंट है उसको प्रोटेक्शन भी दे और उस पर कार्रवाई भी होगी बाजाबता।
यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लड़की का बयान लिया गया है और लड़की की आइडेंटिटी को रिवील किया गया है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस पर राज्य सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है?
देखिए, वो एक इशू तो है, उसमें कोई दोहरी बात नहीं है, लेकिन जैसे वहाँ पे हालात थे, वैसे हालात में अगर लड़की का स्टेटमेंट पब्लिक ना किया जाता तो कश्मीर वुड हैव बीन ऑन बॉयल। तो हमने हालात को नजर में रख के उस वक्त वो स्टेटमेंट जो ही पब्लिक के पास आया है, द इम्पोर्टेंट वॉज कि लोगों को हकीकत पता चले कि क्या हुआ है वहाँ पे। और वो तो पहला स्टेटमेंट वही लड़की ही कन्वे कर सकती थी, उसके मुंह से जाए, उसके जुबान से जाए, दैट वही सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर कल को, क्योंकि लोगों को हकीकत तो पता चलनी चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ।
लेकिन ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बयान जो है किसने लिया है, सेना ने लिया है, पुलिस ने लिया है?
देखिए, इंसिडेंट में आप समझिए 3-4 लोगों की डेथ हुई है, वहाँ पूरा आक्रोश था लोगों में और उस दौरान ये सब चीजें हुई है। वो तो हम जो प्रोब ऑर्डर हुआ है दैट विल कम टाइम, थोड़ा टाइम और पेशेंस के बाद ही वो पता चलेगा, बट वी आर नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन। तो इट विल बी टेकन की वाई इट वॉज लीक टू पब्लिक, बट एट द सेम टाइम वी आर अंडरस्टैंडिंग की इसकी जरूरत तो थी ताकि लोगों को पता चले, ताकि और जाने न जाए।
तो आपको लगता है कि अब इस वीडियो पे जो लड़की का बयान लिया गया है उससे आपको लगता है कि तनाव कम हुआ है?
काफी हुआ है, क्योंकि क्लैरिटी थोड़ी बहुत आई है तो उससे थोड़ा फर्क तो पड़ा है, अदरवाइज 4 लोगों की जाने गई है और मॉलेस्टेशन का चार्ज था।
लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वकील जो है वो अगर इस लड़की से मिलना चाहते तो उन्हें इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है?
नहीं देंगे, देखिए अभी इस वक्त हालात को और यू कांट ऐड फ्यूल टू द फायर, बट कुछ टाइम के बाद उनके पास पूरा समय है और एक तरीके में जांच होनी चाहिए और हम लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। वी आर कमिटेड टू द ह्यूमन राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल एज वेल, बट थोड़ा बहुत समय चाहिए, इस वक्त में नहीं।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में सामाजिक एकता मंच नामक संस्था को भंग कर दिया गया है। सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि ये मंच पुलिस संरक्षण में चल रहा था और यह उन लोगों के खिलाफ सक्रिय था जो बस्तर में पुलिस की हिंसक गतिविधियों और फर्जी मुठभेड़ों को उजागर कर रहे थे। मानवाधिकार संगठनों द्वारा सामाजिक एकता मंच को 2005 में शुरू किए गए सलवा जुड़ूम का दूसरा हिस्सा बताया जा रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। रायपुर से आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट।
सामाजिक एकता मंच को ऐसे समय में भंग किया गया है जब एक दिन बाद शनिवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर में माओवाद प्रभावित राज्यों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि सामाजिक एकता मंच की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि नक्सल मोर्चे पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की मंशा के साथ बस्तरवासियों ने सामाजिक एकता मंच का गठन किया था। बयान में कहा गया है कि सामाजिक एकता मंच के बहाने कुछ लोग सरकार, प्रशासन एवं पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मानवाधिकार संगठन PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह ने कहा है कि सामाजिक एकता मंच को पुलिस संरक्षण में शुरू किया गया था और जिस तरीके से यह संगठन काम कर रहा था उससे बस्तर के लोगों में दहशत थी।
सामाजिक एकता मंच की स्थापना इसलिए की गई थी कि पुलिस इसकी आड़ में पत्रकारों को दूसरे लोगों पर कार्रवाई करे और वो अपनी कानूनी तरीके से बची जा सके। अगर वे ईमानदारी के साथ ही मानते हैं कि सामाजिक एकता मंच की गतिविधियाँ कानून के खिलाफ थी और वो ऐसा काम कर रहे जिससे पुलिस बदनाम हो रही थी, तो उन्हें ये बात माननी चाहिए कि जिन पत्रकारों के खिलाफ, जिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ वकीलों को ढूंढाया, उनको वहाँ से भागने को मजबूर किया कि आप भी दोबारा उन क्षेत्रों में आ सकेंगे।
मानवाधिकार संगठनों द्वारा सामाजिक एकता मंच को 2005 में शुरू किए गए सलवा जुड़ूम का दूसरा हिस्सा बताया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने बस्तर के आदिवासियों को हथियार दे दिए थे। इन हथियारबंद लोगों ने पुलिस संरक्षण में बड़ी संख्या में हत्या, बलात्कार और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम को असंवैधानिक बताते हुए राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से सलवा जुड़ूम को बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद पिछले साल बस्तर में सामाजिक एकता मंच नामक संगठन बनाए जाने की घोषणा की गई। हालांकि PUCL के अध्यक्ष लाखन सिंह का कहना है कि आज जब सामाजिक एकता मंच को भंग कर दिया गया है तो यह भी पुलिस की ही रणनीति का हिस्सा है। सामाजिक एकता मंच शुरू से विवादों में रहा है। आदिवासियों को कानूनी सहायता मुहैया करवाने वाली संस्था जगदलपुर लीगल एड ग्रुप नामक संस्था की महिला वकीलों के खिलाफ सामाजिक एकता मंच ने कई अवसरों पर धरना प्रदर्शन किया। स्वतंत्र पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम के खिलाफ आंदोलन करने और कथित रूप से उनके घर पर पत्थरबाजी के आरोप भी इस संगठन पर लगे। आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं मिलने और सामाजिक एकता मंच के विरोध के कारण जगदलपुर लीगल एड ग्रुप नामक संस्था की महिला वकीलों और पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम को बस्तर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत सरकार की योजना आयोग द्वारा माओवादियों की समस्या की पड़ताल के लिए बनाई गई विशेष कमेटी की सदस्य रहीं बेला भाटिया को भी सामाजिक एकता मंच के लोगों ने माओवादी बताकर उन्हें निशाने पर लिया। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार कहते हैं,
लोकतंत्र में कानून को हाथ में लेकर काम करने वाले ऐसे किसी संगठन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और खासकर सरकार या सत्ता के समर्थन से तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर सचमुच यह संगठन भंग हो गया है तो कुछ महीनों के भीतर इसके पीछे के लोगों को ये समझ में आ गया कि ये अंतहीन नहीं चल सकता सिलसिला।
सामाजिक एकता मंच के भंग होने की खबर के बाद अब सबकी निगाहें बस्तर पर लगी हुई हैं कि पुलिस का अगला कदम क्या होगा। क्या पुलिस फिर से कोई नया संगठन तैयार करेगी? आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
मैंने इस मुद्दे पर माओवादियों के निशाने पर रहे राज्य के पूर्व विधायक और आदिवासी महासभा के अध्यक्ष मनीष कुंजाल से बात की और पूछा कि सामाजिक एकता मंच को भंग किए जाने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है।
ये एक बहुत अच्छा फैसला है कि ये तो वो बैन कर दिया गया, लेकिन ऐसा करो कोशिश यहाँ तो पुलिस हमेशा करती रहेगी ना। ये तो पुलिस के द्वारा बनाया हुआ संगठन था और कुछ भी कर रहे थे ये लोग। मुझे लग रहा है कि यही ये अंत नहीं है। पहले भी इस तरीके से प्रयोग पुलिस ने किया था और अभी भी ऐसा हो सकता है, ये संभावना है।
जी मनीष जी, आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आपने भी एक पदयात्रा निकाली थी जिसमें माओवादियों के खिलाफ नारे लगे थे और एक माहौल तैयार हो गया था। ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये एक खतरा बना ही रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल रहता है और हम लोग उस समय भी बहुत प्रेस से और हर तरीके से विरोध किए, ऊपर से मिलकर बात किए कि आप हमारा एक संगठन है, हम लोगों का एक तरीका है, वहाँ अगर आकर के ये लोग इस तरीके से, वो भी पुलिस के लोग, सामाजिक एकता मंच में पुलिस भी है और व्यापारी है, कुछ बजरंग दल के और इस तरीके के लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए लोग, तो ये सब मिल करके ये सब कर रहे थे। तब भी हम लोगों ने इसका विरोध किया कि ये तरीका ठीक नहीं है, इससे स्थिति खराब हो जाएगी। और पर अब हम लोगों की बातें तो कभी मानी नहीं गई ना सरकार की तरफ से या पुलिस ने कभी। यहाँ हम लोग अगर बोलते हैं तो उसके जस्ट उल्टा ही करते हैं।
जी, महेंद्र कर्मा के बेटे ने पिछले साल ही कहा था कि सलवा जुड़ूम पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। आज ये खबर आ रही है कि सामाजिक एकता मंच को डिसबैंड कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये डर रहता नहीं है कि ये दोबारा शुरू हो सकते हैं ऐसी संगठन?
देखिए, बस्तर में जब तक इस तरीके की लड़ाई है, पुलिस ये सब करते रहेगी, सरकार ऐसा करती रहेगी, और संभावना है फिर खड़ी होगी कोई ना कोई दूसरे नाम से या कुछ दूसरे रूप से। अब देखिए यहाँ तो काम कर रहे हैं और ये सब हम लोग तो देख रहे हैं, ऐसा अब क्या किया जा सकता है, जो भी है कोशिश तो कर रहे हैं सब लोग अपने अपने तरीके से। बल्कि हम यही कहेंगे कि ये जो जुड़ुम टाइप या कोई भी संविधान के बाहर की कोई ताकत बस्तर के अंदर थी, ठीक है नेक्स्ट डे संविधान को नहीं मानते वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो सरकार संविधान को मानने वाले लोग अगर इस तरीके की कोई गतिविधियां चलाए तो वो फिर ठीक नहीं है। इसका जवाब फिर क्या है, फिर तरीका क्या है, रास्ता क्या होना चाहिए? आप तो एक तो संविधान को मानना एक नहीं मानने वाली लड़ाई है, आप स्वयं भी संविधान को नहीं मान रहे हैं, ये भी एक गलत चीज है जो संदेश भी गलत जाता है।
बस्तर में आदिवासियों की आवाज उठाने वाले ये थे मनीष कुंजाल।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या चुनावी राजनीति की मजबूरी है भीमराव अंबेडकर? बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी राजनीतिक दल भीमराव अंबेडकर की परंपरा का वारिस बनने की होड़ में हैं। तो क्या ये पार्टियां अंबेडकर के विचारों से सहमत हैं या अंबेडकर को स्वीकार करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है? इस बार इंडिया बोल में चर्चा का विषय होगा अंबेडकर के प्रति अचानक इतनी श्रद्धा क्यों। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 16 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है विवेचना का। गजल की विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय अगर बेगम अख्तर को के बाद किसी को दिया जा सकता है तो वो है इकबाल बानो। दुनिया भर के गजल प्रेमियों को अभी तक याद है जब उन्होंने फैज़ की रचना हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे गाई थी और 50,000 लोगों ने खड़े होकर न सिर्फ उन्हें दाद दी थी बल्कि उनके सुर में सुर भी मिलाया था। उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
अपनी मोहब्बत के अफसाने कब तक राज बनाओगे, रुसवाई से डरने वालों, रुसवाई से डरने वालों, बात तुम्हें फैलाओगे।
इकबाल बानो ने परंपरा और आधुनिकता के जबरदस्त सम्मिश्रण से भारतीय उपमहाद्वीप की गायन कला को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। यूं तो फैज अहमद फैज को कई गायकों ने गाया है लेकिन उनकी गजलों को अमर करने का श्रेय जितना इकबाल बानो को जाता है उतना शायद किसी को नहीं।
शामे फिराक अब न पूछ आई और आके टल के फिर बहल गया।
1985 में जनरल जियाउल हक के शासन के दौरान पाकिस्तान में रेडियो और टेलीविजन पर फैज अहमद फैज की रचनाओं पर अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ था। फैज के जन्मदिन पर लाहौर आर्ट काउंसिल के अलहमरा ऑडिटोरियम में एक समारोह आयोजित किया गया था। सिल्क की साड़ी पहने इकबाल बानो उस दिन एक शेरनी की तरह गर्जी थी। लोगों की भीड़ इतनी थी कि हॉल के दरवाजे खोल दिए गए थे, बाहर सड़कों पर भी लोग खड़े थे। पाकिस्तान की नामी गायिका टीना सानी उन खुशकिस्मत लोगों में से थीं जो उस दिन उस हॉल में मौजूद थे जब इकबाल बानो के साथ हजारों लोगों ने हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे गाया था।
माहौल भी ऐसा ही था, मुल्क में भी माहौल ऐसा था कि जिसमें के लोग खास थे, परेशान भी थे। तो मुझे याद है कि जब उन्होंने ये शुरू किया है तो हॉल में जिस किस्म का शोर पैदा हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने बत्तियां भी बंद कर दी उस हॉल की, थिंकिंग दैट पीपल विल स्टॉप एंड नोबडी स्टॉप्ड, शी डिडंट स्टॉप, शी वेंट ऑन सिंगिंग एंड देन दे टर्न लाइट्स ऑन अगेन। तो वो 80s का एक जमाना मेरे ख्याल है हम सब उस दौर को जानते हैं शायद कि जिसमें कि ये चीजें बहुत हुआ करती थी और प्रोफेशन इस किस्म का बहुत था। आई कांट डिस्क्राइब इट, आई एम ग्लैड कि मैं थी उस दिन उस हॉल में कि जब मैंने पहली दफा उनको ये गाते सुना है और लोगों को पागल होते देखा है।
सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे।
इस गीत को गाने की सजा इकबाल बानो को ये मिली कि उन पर भी पाकिस्तानी टेलीविजन और रेडियो पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके गाने के टेप काले बाजार में बिकने लगे। सरकारी प्रतिबंध के बावजूद वो लोगों के घरों में खास महफिलों में भाग लिया करती थी और कहा जाता है कि कई बार राष्ट्रपति जिया के जनरल सादे कपड़ों में आकर इकबाल बानो के गायन का आनंद उठाया करते थे। में दिल्ली में जन्मी इकबाल बानो का बचपन रोहतक में बीता था। उन्होंने संगीत सीखा था दिल्ली घराने के उस्ताद चांद खां से। 1952 में वो 17 साल की उम्र में पाकिस्तान चली गई, जहां उनकी एक जमींदार घराने में शादी हो गई, लेकिन दिल्ली का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दिल्ली घराने के खलीफा इकबाल अहमद कहते हैं,
हम बाजी बुलाते थे उनको। उन्होंने हमारे नाना से संगीत सीखा। जब भी वो भारत आती थी हमारे यहाँ ही रुकती थी। जब भी वो शाम को बोर हो जाती मुझसे कहती कि मुझे दिल्ली घुमाने ले चलो। मेरे पास उन दिनों पुरानी फिएट कार हुआ करती थी और मुझे उन्हें उस पर बिठाने में शर्माया करती थी, लेकिन वो हंसकर कहा करती थी दिल बड़ा होना चाहिए।
मशहूर शास्त्रीय गायिका शांति हीरानंद की उनसे मुलाकात लाहौर में हुई थी।
वो बड़ी अच्छी औरत थी, मतलब कि कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, और अच्छे से तपाक से मिलती थी, अच्छी तहजीब थी उनकी। पर एक बात का उनको बहुत अफसोस था, वो ये था, वो कहने लगी कि जब हमारी शादी हो गई यहाँ पाकिस्तान में और हम गाना गाते थे तो लोग कहते थे कि ये गाना गाती हैं, इनकी लड़कियों की शादियां नहीं होंगी। तो जब मुझे सीखना होता था तो मैं मुल्तान चली जाया करती थी अपने पुराने घर में और वहाँ बुला के खान साहब को और सीखती थी।
इल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं।
'86 में जब इकबाल बानो दिल्ली आई थीं तो ऑल इंडिया रेडियो की फारसी विभाग की अध्यक्षा सलमा हुसैन ने रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था।
मैंने इनसे कहा था रिकॉर्ड करने के बाद कि इकबाल बानो साहब आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी दावत कबूल फरमाएं और मेरे घर आएँ। आप तो कहा कि मसरूफ तो बहुत हूँ, पर तुमने इतनी प्यारी बात कही है और इतने अच्छे से तुमने कहा है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, तो बताओ मैं कब आऊँ। और फिर उन्होंने दूसरे ही दिन हमारे घर आकर खाना खाया और एक छोटी सी महफिल हमारे घर थी जिसमें हमारे बहुत सारे करीब के दोस्त थे। और इकबाल बानो ने वो शाम ऐसी यादगार शाम हमें दी कि हम भूल नहीं पाएंगे।
मैंने टीना सानी से पूछा कि आपने इकबाल बानो के करियर को बहुत नज़दीक से देखा है, आपको उनकी कौन सी कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा पसंद है?
रश्ते तन्हाई, हमेशा से। As far as I remember, I may have been 12 or 13, और जब से मुझे नहीं पता था उस जमाने में कि ये फैज साहब ने लिखी है। एक्चुअली मैं कह सकती हूँ कि बच्चे बच्चे को जुबानी याद होती थी उस जमाने में, और आज भी यंगर जनरेशन को मैं देखती हूँ तो whenever I perform this a lot, और जब भी इस पे मैं आती हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ जैसा भी गा दूँ। लोगों को इतना लगाव है इन नज़मों से, खासतौर पर दश्ते तन्हाई।
दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लरजा तेरी आवाज के साए।
इकबाल बानो भारत और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान में भी उतनी ही लोकप्रिय थी। 1979 से पहले वो हर साल काबुल के सांस्कृतिक मेले जश्न काबुल में भाग लेती थी। वहीं एक बार अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह ने उन्हें एक सोने का वाज भेंट किया था। सलमा हुसैन याद करती है।
मैंने उनसे ये पूछा था कि आप फारसी कैसे आपने गाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे मुझे अमीर खुसरो का कलाम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक कहा कि ये मैंने एक गज़ल अमीर खुसरो की पढ़ी और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू ऑल्सो फाइंड आउट मोर एंड आई एम गोइंग टू सिंग। और वो थी खबरम रसीद इमशब के निगार खाहद आमद सरे मन फिदाए राही के सवार खाहद आमद। कहा यह अमीर खुसरो की ये गज़ल हमको इतनी अच्छी लगी उसके बाद हमने कहा कि हम और भी ढूंढें। फिर निज़ामी गंजबी को ढूंढा, फिर उन्होंने गाना शुरू किया और फिर उनकी अफ़गानिस्तान में बड़ी आवभगत हुई, ईरान में उनकी बड़ी आवभगत हुई। इस तरह वो फारसी जबान पर उबूर हासिल करती गईं।
इकबाल बानो जब मंच पर आकर अपने नियंत्रित हास अंदाज में गाना शुरू करती थीं तो दुनिया जैसे रुक जाया करती थी। उनको इस दुनिया से गए 7 साल होने को हैं, लेकिन उनके संगीत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फैज का एक शेर याद आता है, वीरा है मैं कदा हमो सागर उदास है तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के।
कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक राह दिखला, कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक राह दिखलाओगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक याद ना आओगे।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप इकबाल बानो पर रेहान फजल की विवेचना कल विश्व भारती में दोबारा 8 बजे सुन सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार bbchindi.com पर पढ़ भी सकते हैं। और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक और लड़के की मौत। हंदवाड़ा में मार्च निकाल रहे कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। कई इलाकों में कर्फ्यू अब भी जारी। राजधानी दिल्ली में आज से ऑड इवन योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। उत्तरी सीरिया के अलप्पो शहर में जबरदस्त लड़ाई जारी है। लड़ाई में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को मिल रही सफलता के कारण हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उद्योगपति विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित किया। ब्राजील की संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति जिल्मा रुसेफ पर महाभियोग चलाने पर बहस शुरू हो गई है। रविवार को संसद के निचले सदन में महाभियोग पर वोटिंग होगी। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कैद अल एसलबेसी ने कहा कि पड़ोसी देश लीबिया में किसी भी विदेशी सैनिक कार्रवाई से लीबिया बिखर सकता है। यमन में सेना के सूत्रों ने कहा है कि सरकार समर्थित सुरक्षा बलों ने चरमपंथी संगठन अलकायदा को दक्षिणी प्रांत की राजधानी होता से बाहर कर दिया है। ब्रितानी पुलिस ने ब्रसल्स और पेरिस हमलों के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ब्रसल्स और पेरिस हमलों की तैयारी में मदद करने का शक है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।